Time, I just greet you all in the precious name of our Lord. I'm reminded of two very special verses in the scriptures.
Bible Muqaddas mein se do khaas ayat mere zehen mein aa rahi.
Psalms 118.
Zabur 118 mein.
This is the day the Lord has made.
Yehi wo din hai jise Khudaman ne banaya hai.
Let us rejoice and be glad in it.
Aaye hum isme khush ho aur shadmani manaye.
In Matthew chapter 24,
aur Matti ki Injil ke 24ve bab mein,
verse 14,
aur uski 14vi ayat mein,
this gospel of the kingdom will be preached to all nations.
Aur badshahi ki khushkhabri ki munadi sabko mumme ki jayegi.
And then the end will be.
Tab khatma hoga.
I'm very grateful for this day.
Is din ke liye main bahut shukrguzar.
And let us just pray once again.
Aaye hum saron ko jhukaye dua kare.
Our Heavenly Father, we commit this service to you.
Aasmani Baap, aaj ki ye ibadat hum tere naam lagate hain.
Save the lost, heal the sick, deliver those who are bound.
Wo jo khudaamand qaid mein hai unhe azad kar, jo khudaamand gunaah ki qaid mein hai tu unhe khalasi ata kar aur bimaron ko shifa de.
Please open our understanding to know the scripture.
Khudaawand apne kalam ki samajh hame ata kar.
To know the time we're living in.
Taaki hum us waqt ko pehchane jisme reh rahe hain.
To know your promised word for this day.
Aaj ke din ke liye tere vaade ko jaane.
Be with us in Jesus' holy name.
Yesu ke naam mein hamare saath.
Amen.
Amen.
You may be seated.
Aap baith sakte hain.
First of all, I'd like to say a few words.
सबसे पहले मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ.
To our beloved brother Cameron Michael to invite me for this great meeting.
भाई कामरन माइकल ने मुझे इस बड़ी इबादत के लिए बुलाया.
And we all believe that this is our text.
और मुझे उम्मीद है कि ये है हमारा बड़ा हवाला.
Jesus Christ the same yesterday, today and forever.
Khudaawand Yesu Masih kal aur aaj balki abad tak yeksan.
I'm sure I don't have much time here this evening.
Aaj shaam mere paas bahut zyada waqt to nahi.
But I shall read a few scriptures.
Lekin main chand hawale aapke samne padhunga.
But mainly refer to them.
Khaas taur par main unka ishara hi karunga, unka bayan karunga.
I believe every word of God.
Main khuda ke kalam ki sab baaton par yakeen rakhta.
But I don't believe the many interpretations.
Lekin bahut sari tashreehat jo unki ki jati hai, main unse muttafiq nahi.
God is a God of realities.
Hamara khuda haqeeqat ka khuda hai.
And we have to understand by the grace of God.
और इस बात को हमें उसके फजल से समझने की जरूरत है.
That in this book we call the Bible.
और ये कि ये कलाम बाइबल मुकद्दस.
The whole plan of salvation is written.
नजात का सारा मंसूबा इसके अंदर मरकूम है.
From the very beginning to the very end.
बाइबल के आगाज से लेकर उसके इख्तिताम तक.
And we have to understand by God's grace.
और इस कलाम को हमें उसके फजल से समझने की जरूरत है.
That we're now living in a very special time.
और ये कि हम ये बड़ा खास वक्त है जिसमें जी रहे हैं.
We don't have time to go into all these scriptures.
बहुत सारे हवालों को हम बाइबल मुकद्दस में से नहीं देख सकेंगे.
But there were promises for the first coming of our Lord and Savior.
लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की पहली आमद से पहले वायदे दिए गए थे.
And they all were fulfilled at the first coming of Christ.
और जब खुदावंद यीशु मसीह पहली दफा इस जमीन पर आए थे वो सब के सब पूरे हो गए.
There are promises for the second coming of Christ.
और इसी तरह से खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद से मुतालिक वायदे.
And they're now being fulfilled before our very eyes.
और बहुत सारी सारी बातें हमारी आंखों के सामने आज पूरी हो रही है.
God knows the end from the beginning.
खुदा ही सिर्फ आगाज से इख्तिताम को देख सकता है.
Already in eternity he could plan for the time.
उसने असल से इस वक्त को पहले से मखसूस कर दिया.
So we look to the creation.
इसलिए हम पीछे तखलीक को देखते हैं.
And we look to the salvation.
और फिर हम निजात को देखते हैं.
Creation is a reality.
तखलीक हकीकत पर मबनी है.
In the beginning God created the heavens and the earth.
इब्तिदा में ही खुदा ही ने सब कुछ जमीन और आसमान को पैदा किया.
That is a reality.
ये एक हकीकी बात है.
We don't need to discuss about it.
इसके बारे में कोई बहस और तकरार करने की जरूरत नहीं है.
Then we have to understand.
फिर हमें ये भी समझने की जरूरत है.
Man was created in the image of God.
कि इंसान को खुदा ने अपनी शबी पर पैदा किया था.
To be in fellowship with God.
ताकि वो खुदा के साथ रफाकत रखे.
There was a time where there was no death, no sickness, no sin.
एक वक्त ऐसा था इस जमीन पर जब कोई बीमारी कोई मौत नहीं थी.
When the first family had fellowship with God.
जबकि ये पहला खानदान खुदा के साथ रफाकत रखता था.
But then came disobedience.
लेकिन फिर नाफरमानी आ मौजूद हुई.
And disbelief.
और फिर इसी तरह बेएतकादी.
The word of God was transgressed.
और खुदा के कलाम की को तोड़ा गया, अधूरी की गई.
And the Lord God had said.
और फिर खुदा ने खुद फरमाया.
The day you eat of the fruit of this tree.
जिस रोज तूने इस दरख्त का फल खाया.
You shall die.
तू मरा.
And so it was.
और बिल्कुल ऐसा ही हुआ.
And so it is today.
और इसी तरह से आज भी है.
Nothing in life is as sure as death.
याद रखे इस जिंदगी में एक ही चीज यकीनी है और वो मौत.
And there is no exception on the face of the earth.
और इस जमीन पर इस असूल से कोई मुस्तस्ना नहीं.
Everyone born into this world will surely die.
वो जो इस जमीन पर पैदा होता है जरूर मरता.
But we are meant to live eternally.
लेकिन फिर भी खुदा चाहता है कि हम हमेशा हमेशा के लिए जिए.
We're made in the image of God.
हमें तो खुदा की शबी पर पैदा किया गया.
And God is eternal.
और चूंकि खुदा अबदी है.
So I have to tell you tonight.
इसलिए मुझे आपको आज शाम बताना है.
That God brought us back to himself.
खुदा ने हमें फिर से अपने और खींच लिया है.
As he revealed himself in Jesus Christ,
बिल्कुल
his only begotten son.
बिल्कुल उसी तरह जैसे उसने अपने आप को अपने इकलौते बेटे में जाहिर किया.
The way of God to us is our way to God.
खुदा का रास्ता हमारी तरफ वही है जो हमारा रास्ता उसकी तरफ है.
There was only one living on earth.
एक ही जिंदगी ऐसी थी जो इस जमीन पर थी.
Who could say I am the way?
जो ये कह सकता था
राह मैं the life.
जिंदगी मैं.
I'm the way, the life and the truth.
राह हक और जिंदगी मैं.
There was only one on earth who could say.
सिर्फ एक ही इस बात को कहने का हकदार.
If you have seen me, you have seen the Father.
वो जो कहने का हकदार था उसने कहा जिसने मुझे देखा उसने बात.
Now you might ask.
अब आप ये पूछ सकते हैं.
Why has redemption to be by the shedding of blood?
आप हो सकता है ये सवाल करें कि इंसानों के लिए मुखलसी खून के बहाए जाने से ही क्यों थी.
If you go back to the Old and the New Testament,
अगर आप पुराने और नए अहदनामे को देखें,
especially to Leviticus chapter 17,
खासतौर पर अहबार की किताब का 17वां बाब,
verse 11 and verse 14,
उसकी 11वीं आयत और उसकी 14वीं आयत,
God's word says, life is in the blood.
खुदा के कलाम में लिखा है खून में जिंदगी है.
Life is in the blood.
खून में जिंदगी है.
And because the original sin happened in the body of flesh and blood.
और चूंकि गुनाह जो है वो इस जिस्म में इस बदन में होते हैं.
The Lord of glory had to come into a body of flesh and blood.
जलाल के बादशाह को इस जमीन पर आकर हम जैसा बदन अपनाना पड़ा.
In order to conquer death, he had to die.
ताकि वो मौत पर फतह हासिल कर सके उसने खुद मौत में से इस राह को अपनाया.
Death had no part in him.
उसमें मौत का कोई असर ना होता.
But he took our place.
लेकिन उसने हमारी हवा ले ली.
Our sins.
हमारे गुनाहों को अपने ऊपर उठा.
Everything that had come upon us.
वो सब कुछ जो हम पर आने को था.
He took upon himself.
उसने अपने ऊपर ले लिया.
Died in our stead.
वो हमारी जगह पर इब्जी होकर मरा.
He shed his blood.
उसने अपना लहू बहाया.
To redeem us.
ताकि हम बच
सके. To bring us back into fellowship with God.
खुदा के साथ फिर से एक करने के लिए उसने ऐसा किया.
Not a religion.
ایک مذہب نہیں ہے یہ بات.
God in Christ reconciling the world to himself.
خدا مسیح میں ہو کر دنیا کو اپنے ساتھ ایک کر رہا تھا.
So everything with God is a reality.
اس لیے جو کچھ بھی خدا سے تعلق رکھتا ہے وہ ایک حقیقی بات.
Heaven is a reality.
اسی طرح سے آسمان بھی حقیقی جگہ.
Earth is a reality.
یہ زمین حقیقی جگہ ہے.
Life is a reality.
زندگی بھی حقیقت پر مبنی ہے.
Death is a reality.
موت بھی حقیقت پر مبنی ہے.
But here is the point.
لیکن پھر مرکزی بات یہ ہے.
There was one who conquered death.
ایک ہی تھا جس نے موت پر فتح حاصل کی.
And according to 1 Corinthians 15,
اور پہلا کرنتھیوس کے 15ویں باب کے مطابق,
when the Lord returns,
جب خداوند یسوع آئے گا,
death will be swallowed into the victory.
موت فتح کا لقمہ ہو جائے گی.
And then death will be no more.
اور پھر موت نہ رہے گی.
My beloved friends,
میرے عزیز دوستو,
beloved brothers and sisters in
میرے
Christ,
عزیز بہنوں بھائیوں مسیح یسوع میں,
we have a great future.
ہمارے سامنے ایک عظیم روشن مستقبل ہے.
All eternity is waiting for you.
ہمیشہ کی زندگی ابدیت آپ کی منتظر ہے.
Your life must not end in the grave.
آپ کی زندگی قبر میں ختم نہیں ہونی چاہیے.
You must receive eternal life.
آپ کو ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرنا چاہیے.
Because only if you receive eternal life,
کیونکہ جب آپ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں گے,
you can live eternally.
تب ہی آپ ہمیشہ کے لیے جی سکیں گے.
Natural life is a reality.
یاد رکھیں, یہ جسمانی قدرتی زندگی تو حقیقی ہے.
Not a philosophy.
یہ کوئی فلسفہ نہیں,
it's a reality.
یہ تو حقیقت پر مبنی ہے.
Everything with Jesus Christ,
اور یسوع مسیح سے متعلق کوئی بھی چیز,
is a reality.
وہ بھی حقیقی ہے.
His birth was a reality.
یسوع مسیح کا پیدا ہونا حقیقت
His
پر
life
مبنی.
Was a reality.
اس کی زمین پر زندگی حقیقی زندگی.
His ministry was a reality.
یسوع مسیح کی زمین پر خدمت حقیقی تھی.
His healing ministry was a reality.
یسوع مسیح جو شفا دیا کرتا تھا وہ بھی حقیقی تھی.
His suffering was a reality.
اس نے جو دکھ سا حقیقت پر مبنی.
His death was a reality.
وہ مرا, یہ حقیقت پر مبنی بات ہے.
His burial was a reality.
وہ دفن ہوا, یہ بھی سچی بات ہے.
But also his resurrection was a reality.
اور اسی طرح سے اس کا جی اٹھنا بھی حقیقی بات.
Hallelujah.
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 Glory be to God.
خدا ان کو جلال ملے.
And because he lives,
اور چونکہ وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے,
we live also.
ہم بھی زندہ رہیں گے.
The scripture says,
خدا کے کلام میں لکھا ہے,
1 John chapter 5,
پہلا یوحنا اس کا 5ویں باب,
verse 11 and 12,
اس کی 11ویں اور 12ویں آیت میں,
he that has the son of God has everlasting life.
جس کے پاس خدا کا بیٹا ہے اس کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے.
Because the son of God in himself is eternal life.
اور یہ اس لیے ہے کیونکہ خدا کا بیٹا خود سے ہمیشہ کی زندگی ہے.
1 John chapter 5 verse 20,
پہلا یوحنا 5ویں باب اس کی 20ویں آیت,
so we understand by the grace of God,
ہم خدا کے کل فضل سے اس بات کو سمجھتے ہیں,
that we are ordained to live throughout all eternity.
ہمیں مخصوص کیا گیا ہے کہ ابدیت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جیے.
And eternity is a reality.
اور ابدیت جو آگے آنے والی ہے وہ ہمیں حقیقی بات ہے.
And so I'm here today to tell you,
اس لیے آج شام مجھے اس لیے یہاں پر بھیجا گیا اور میں آیا ہوں کہ آپ کو بتاؤں,
that we can be saved today.
آج ہم بچائے جا سکتے ہیں.
I had a great privilege in my lifetime,
میری زندگی میں مجھے یہ بڑا شرف ملا,
to lead a few millions to Jesus Christ the Lord and Savior,
جہاں میں نے کچھ لوگوں کو یسوع مسیح کے پاس میں لے کر آیا.
And today I'm here to tell you,
اور آج شام میں یہاں پر ہوں آپ کو یہ بتانے کے لیے,
that God's word is true,
کہ خدا کا کلام سچا کلام ہے.
And that God confirms his word,
اور پھر یہ کہ خدا اپنے کلام کو ثابت بھی کرتا ہے.
He still saves, he heals, he delivers.
وہ آج بھی بچاتا ہے, شفا دیتا ہے.
It's a reality.
یہ حقیقت پر مبنی بات ہے.
Salvation is an experience.
یاد رکھیں, نجات تجربے کی بات ہے.
Salvation is a reality.
نجات حقیقی امر.
The natural birth is a reality.
بالکل اسی طرح سے جیسے جسمانی طور پر پیدائش
کی بات ہے. Spiritual birth is a reality.
اسی طرح سے روحانی پیدائش بھی حقیقی بات ہے.
Just as we need a seed for the natural birth,
بالکل اسی طرح سے جیسے ہم بیج بوتے ہیں جسمانی زندگی کے لیے,
we need the seed for the spiritual birth.
ہمیں روحانی زندگی کے لیے بھی بیج کی ضرورت ہے.
And the seed for the spiritual birth is the word of God.
روحانی زندگی کی پیدائش کے لیے خدا کا کلام بیج ہے.
My dear friends,
mere azizo,
this day will decide where you spend eternity.
Aaj ka din aapko batayega ki aap abadiyat mein kahan jayenge.
If you believe what the word of God promises,
agar aap is baat par yakeen kare ki khuda ke kalam ke vaade sachche hain,
then you receive it,
phir aap use hasil kare,
and it's yours,
aur phir ye aapke ho jayenge.
It's yours forever,
aapke liye ho jayenge hamesha hamesha.
Because God makes promises,
kyunki khuda vaadon ko karta hai,
and God keeps his promise,
aur wo apne vaadon ko pura karta hai.
So we understand from the word of God,
isliye hum khuda ke kalam se is baat ko samajhte hain,
that salvation is not in a religion.
نجات کسی مذہب میں پنہا نہیں ہے.
Salvation is only in the Savior.
نجات صرف نجات دہندہ میں ہے.
Healing is with the healer.
اور اس بالکل اسی طرح سے جیسے شفا شافی میں ہے.
And it's all in the Son of God.
اور یہ سب کچھ خدا کے بیٹے میں ہے.
Now for your information.
اب آپ کے علم کے لیے.
The churches teach that God had a son somewhere in heaven.
بعض اوقات کلیسیاں سکھاتی ہیں کہ خدا کا بیٹا آسمان پر کہیں ہے.
The Bible does not teach that.
مگر بائبل یہ نہیں سکھاتی.
The Bible teaches that God is from eternity to eternity.
بائبل یہ سکھاتی ہے کہ خدا ازل سے ابد تک ہے.
There is one God.
ایک ہی خدا ہے.
But this one God is many things.
لیکن یہ ایک خدا بہت کچھ ہے.
He is the creator.
وہ تخلیق کرنے والا خالق ہے.
He is the savior.
وہ نجات دہندہ ہے.
He is the king.
وہ بادشاہ ہے.
He is judge.
وہ قاضی ہے.
He is all things.
وہ سب کچھ ہے.
And God is spirit.
اور خدا روح ہے.
And no one has seen God at any time.
خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا.
But at the beginning of time,
لیکن اب ابتدا میں,
the one God manifested himself in a visible form.
اس خدا نے اپنے آپ کو ایک دیدنی شکل میں اتارا.
That's the way he walked in the Garden of Eden.
اور یہی اس کا طریقہ تھا وہ باغ عدن میں گھوما پھرا.
Creating man in his own image.
اور پھر انسان کو اپنی صورت پر پیدا.
Talking to the prophets.
اور نبیوں سے کلام کیا.
Visiting Abraham.
ابراہیم سے ملا.
In Genesis chapter 18.
پیدائش کے 18ویں باب میں.
Just throughout the Old Testament,
سارے پرانے عہد نامے میں,
the invisible revealed himself in a visible form.
وہ جو نہ دیدہ ہے اس نے اپنے آپ کو دیدنی شکل میں اتارا.
In the New Testament,
نئے عہد نامے میں,
the same Lord became our Savior.
یہی خداوند ہمارا نجات دہندہ بن گیا.
In the beginning he was the Word.
ابتدا میں کلام تھا.
But the Word was made flesh and dwelt among us.
لیکن یہی کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا.
You don't have to understand this.
آپ کو اسے سمجھنے کی کوشش یا ضرورت نہیں ہے.
You just have to believe it.
آپ کو صرف اس پر یقین کرنے کی ضرورت ہے.
In the Old Testament,
ہمارے نئے عہد نامے میں,
there were all the promises.
پرانے عہد نامے میں سارے وعدے کیے گئے.
That the Son of God would be born.
اور وہ وعدے یہ تھے کہ خدا کا بیٹا پیدا ہوگا.
The first promise is given in Genesis 3 verse 15.
سب سے پہلا وعدہ جو دیا گیا وہ پیدائش 15 تیسرے باب کی 15ویں آیت میں ہے.
Then you can go through all the Old Testament.
اور پھر آپ اسی طرح سے سارے پرانے عہد نامے کو دیکھ سکتے.
2 Samuel chapter 7 verse 14.
دوسرا سیموئیل 7واں باب اس کی 14ویں آیت.
I will be father unto him and he will be son unto me.
میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا.
Also in the psalm, the second psalm.
اور اسی طرح سے
verse 7, Psalms 2 verse 7.
دوسرا زبور اور اس کی 7ویں آیت.
Thou art my son, today have I begotten thee.
تو میرا بیٹا ہے اور آج تو مجھ سے پیدا ہوا.
In Psalms 89.
اور اسی طرح سے زبور اس کا زبور نواسی.
I will make him the firstborn among all the brothers.
میں تجھے سب بھائیوں میں پلوٹا بناؤں گا.
Isaiah chapter 7 verse 14.
اور یسایہ 7واں باب 14ویں آیت.
A virgin will conceive and bear a son.
وہاں پر لکھا ہے کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی.
Here is the mystery of God's plan of salvation.
خدا کے نجات کے منصوبے کا راز یہ ہے.
In Jesus Christ, the Son of God.
خداوند یسوع مسیح خدا کا بیٹا.
God made the beginning of the new creation.
خدا نے اسے سب تخلیق میں آغاز میں رکھا.
As in Adam, all die in Christ are all brought to life.
بالکل اسی طرح جیسے آدم میں سب مرتے ہیں مسیح میں سب زندہ کیے جاتے ہیں.
So we understand from the word of God.
اس لیے ہم خدا کے کلام में से समझते हैं
that God was in Christ,
के खुदा मसीह में था
reconciling the world to himself,
जो सारी दुनिया को अपनी तरफ ले रहा था, मेल मिलाप कर रहा था
and according to Galatians chapter 4 from verse 4,
और फिर इसी तरह से गलतियों चार बाप चौथी आए
in the Son of God,
वहां पर लिखा है कि खुदा का बेटा
we were placed back as sons and daughters of God,
हमें खुदा यीशु मसीह के वसीले से खुदा के बेटे और बेटियां बनाया गया
into our original relationship with our heavenly father,
और ये वही ताल्लुक है जिसमें हम पैदा किए गए थे इब्तिदा में
so this is not a philosophy,
इसलिए ये कोई फलसफा नहीं मेरे बहनों भाइयों
this is a reality,
ये एक हकीकी बात है
but you must experience it,
मगर आपको इसका तजुर्बा करने की जरूरत है
as I said before,
जैसे मैंने पहले कहा
everything is a reality,
सब कुछ हकीकत पर मापनी
दिस लाइफ इज अ रियलिटी,
ये जिंदगी हकीकी
That we must have the eternal life so can we live eternally.
हमेशा की जिंदगी हमेशा के लिए जिंदा रहने के लिए हमें अपनी जिंदगी को हासिल करना जरूरी है
The main point in this time is the following.
आज शाम या हमारे लिए अब जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि पैरवी करें
Time has a beginning and time will have an end.
याद रखें वक्त का आगाज हुआ वक्त का इख्तिताम भी हो सकता है
Even the time of grace has a beginning and will have an end.
और ये भी याद रखें कि फजल का अगर आगाज है तो फजल का इख्तिताम भी हो सकता
है एंड द बाइबल स्पीक्स इन मेनी प्लेसेस अबाउट द लास्ट डेज
और बाइबल मुकद्दस बहुत सारी जगहों पर आखिरी दिनों का जिक्र करती है
इन मैथ्यू 24
मत्ती की इंजील के 24वें बाब में
मार्क 13
और मरकुस 13वें में
लूक 21
लूका 21वां बाब
फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 4
पहला तिमोथियस चौथा बाब
सेकंड तिमोथी चैप्टर 3
दूसरा तिमोथियस तीसरा बाब
सेकंड पीटर चैप्टर 3
दूसरा पत्रस तीसरा बाब
Even in the epistle of Jude,
और इसी तरह यहूदा के खत में
all the scriptures speak about the end time.
इन हवालों में आप आखिरी दिनों के मुतालिक पढ़ सकते हैं
about the last days.
और आखिरी जमाने के मुतालिक
And our Lord said,
और फिर हमारे खुदावन ने फरमाया
that at the end of time,
कि आखिरी जमाना में
this original gospel,
ये हकीकी और सच्ची इंजील
The gospel of Jesus Christ,
यीशु मसीह की अंची,
will be preached to all nations.
यीशु ने कहा इसकी मुनादी तमाम दुनिया में की जाए.
As a witness,
और ये गवाही के लिए होगी.
And then the end will be.
और यीशु ने कहा तब खात्मा होगा.
Never in the history of mankind,
इंसान की तारीख में कभी भी,
were so many possibilities,
कभी भी ऐसा नहीं होता इतनी बातें मुमकिन ना.
To share the gospel of Jesus Christ with all the nations,
तमाम कौमों में अंजील की मुनादी पहले कभी भी मुमकिन ना थी.
So we understand from the word of God
इसलिए हम खुदा के पाक कलाम में से समझते हैं
that we're living at the end of the time of grace
कि हम फजल के आखिरी दौर में रह रहे हैं
looking into the history of mankind
जब हम इंसान की तारीख पर नजर डालते हैं
we have 2000 years from Adam to Abraham
हम इस बात को समझते हैं कि आदम से लेकर इब्राहिम तक 2000 साल
we have 2000 years from Abraham to Christ
और इसी तरह से इब्राहिम से मसीह तक 2000 साल
and now we finish again the period of 2000 years
aur phir masih se lekar ab tak 2000 saal pure ho gaye
and with the word of god we read in the word of god we read
aur bible muqaddas mein hum ye baat padhte hain
one day with the lord
ke khudaman mein ek din
is like 1000 years
1000 baras ke barabar hai
and the 1000 years is one day
aur 1000 baras ek din ke barabar
in second peter chapter 3 verse 8
aur ye baat aap dusra patras teesre दूसरा पत्र तीसरा बाबर उसकी आठवें आयत में देखो
देयर आर ओनली 1000 इयर्स लेफ्ट
इसलिए सिर्फ 1000 वर्ष रह गए
आई डोंट नो व्हेन द लास्ट 1000 इयर्स विल स्टार्ट
मुझे ये नहीं पता कि उस 1000 वर्ष का आगाज कब शुरू कब
आई जस्ट नो फ्रॉम द होली स्क्रिप्चर्स
मैं सिर्फ बाइबल मुकद्दस से ये बात जानता हूं
दैट वी हैव अराइव्ड एट अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड
हम इंसान की तारीख के ऐसे मोड़ पर है जहां अब तब्दीली आने वाली है
आई कैन नॉट गो इनटू डिटेल्स
बहुत सारी तफसील को बयान मैं नहीं कर सकता
बट द साइंस ऑफ द टाइम स्पीक अ वेरी लाउड लैंग्वेज
लेकिन अगर आप इर्द गिर्द निशानात को देखें तो वो खुद बोल रहे हैं
एंड आवर लॉर्ड सेड इन मैथ्यू 24
हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती 24वें बाब में फरमाया
33
और उसकी 33वीं आयत में
एंड आल्सो इन लूक चैप्टर 21
और इसी तरह लूका 21वें बाब में
वर्स 29
उसकी 29वीं आयत में
And in Mark 13,
और मरकुस 13 में
verse 22,
उसकी 22वीं आयत में
When you see the things I predicted to take place.
खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जिन बातों को मैंने जिक्र किया जब तुम इनको पूरा होते हुए देखो.
Our Lord spoke about wars and rumors of wars about all the catastrophes.
खुदावंद यीशु मसीह ने जंगों का और जंगों की अफवाहों का और बहुत सारी अफवाह का जिक्र किया.
Nation would be against nation.
खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कौम के खिलाफ कौम
होगी. All these things would come upon the earth.
यीशु ने कहा ये सब बातें इस जमीन पर पूरी होंगी.
Then our Lord said.
और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया.
About earthquakes, you know it in this country.
खुदावंद यीशु मसीह ने भूचाल का जिक्र किया और हम पाकिस्तान में जानते हैं
He even spoke about the tsunami.
और उसने सुनामी का भी जिक्र किया.
In Luke chapter 21,
लुका की अंजील के 21वें बाब में,
He says the roaring of the seas will be the roaring of the waves.
खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि समुद्र की लहरें उठेंगी और फिर
Everything that happens now on the earth is foretold in this.
वो सब कुछ जो अब जमीन पर वकूफ पजीर हो रहा है खुदा के कलाम में पहले से मरकूज है.
And we call it the signs of the end time.
और हम इन्हें आखिरी जमाने के निशानात कहते हैं.
And our Lord said, when you see all these things come to pass,
हमारे खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि जब तुम इन सब चीजों को होते हुए देखो,
then you know it is near.
तो फिर समझ लेना कि वो नजदीक है.
You don't know the day or the hour.
यीशु मसीह ने कहा कि तुम ना उस दिन और उस घड़ी को जानते हो.
But you know it is near.
लेकिन तुम जान जाओगे कि वो नजदीक है.
And our Lord said, then it is at the door.
बल्कि यीशु ने कहा समझ लेना कि वो दरवाजे पर है.
When we came here today,
आज जब हम यहाँ आए,
at the moment we arrived here at the entrance,
और जैसे ही हम इस दखल पर पहुंचे,
we had just had to come in.
हमें यहाँ अंदर आना था.
Our Lord wants to say,
हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमसे कह रहा है,
When you see all these things come to pass,
जब तुम इन सब चीजों को पूरा होते हुए देखो,
then you know the time is near.
तो समझ लेना कि वक्त नजदीक है.
But there's one other thing.
एक और बात.
1 Thessalonians chapter 5.
पहला थिस्सलुनीकियों पांचवां बाब.
From verse 1-5.
पहली आयत से पांचवी आयत तक.
The day of the Lord will come as a thief in the night.
जहां पर लिखा है कि खुदावंद का दिन रात को जैसे चोर आ जाता है उस तरह होगा.
And then we are told when it will come.
और फिर हमें बताया गया है कि कब वो आए.
When they will say peace and safety, then sudden destruction will come.
तीसरी आयत में लिखा है जिस वक्त लोग कहते होंगे कि सलामती और अमन है उसी वक्त उन पर नागहां हलाकत आएगी.
You can read it 1 Thessalonians chapter 5.
पहला थिस्सलुनीकियों पांचवा बाब.
So the day of the Lord will come as a thief in the night.
खुदावंद का दिन जैसे चोर रात को आता है वैसे आ जाएगा.
What is the day of the Lord?
खुदावंद का दिन क्या है?
This is the day of salvation.
आज ये निजात का दिन है.
This is a time of grace.
ये फजल का वक्त है.
But after this time,
लेकिन जैसे ये वक्त खत्म होगा,
God will judge the earth.
खुदा इस जमीन पर अदालत को कायम करेगा.
The world will be in flames.
तमाम काम जल जाएंगे.
2 Peter chapter 3 verse 10.
दूसरा पत्रस तीसरा बाब दसवीं आयत.
The world will be on fire.
ये दुनिया आग से जलेगी.
And all man's works will go up in flame.
और बाइबल में लिखा है कि दुनिया के सब काम जल जाएंगे.
So after the time of grace,
जैसे ही फसल का वक्त खत्म होगा,
after the day of salvation is finished,
बिल्कुल उस वक्त जब निजात का दिन इख्तिताम पजीर होगा,
Let me read to you what is going to happen.
मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या होगा.
The sun will shine no more and the moon will turn into blood.
सूरज तारीख हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी ना देगा.
You can read it in Isaiah chapter 13.
आप इसे यशाया 13 बाब में पढ़ सकते हैं.
You can read it in Joel chapter 2.
आप इसे योएल के दूसरे बाब में पढ़ सकते हैं.
You can read it in Zephaniah chapter 2.
और आप सिर्फ में आओ उसके दूसरे बाब में से पढ़ सकते हैं.
You can read it in the Old and New Testament.
आप इसे पुराने अहदनामे में और नए अहदनामे में पढ़ सकते हैं.
In the New Testament, it's in Matthew 24.
और अगर आप इसे नए अहदनामे में देखना चाहते हैं मत्ती के 24वें बाब में.
In Matthew 24, you can read it. The sun will be darkened and the moon will give his light no more.
खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि चांद अपनी रोशनी न देगा, सूरज तारीख हो जाएगा.
Matthew 24, verse 29.
और ये मत्ती की इंजील के 24वें बाब की 29वीं आयत में.
You can also read it in Mark chapter 13.
और इसे आप मरकुस 13वें बाब में भी देख सकते हैं.
From verse 24 to 27.
24वीं आयत से 27वीं आयत तक.
You can also read it in Luke chapter 21.
आप इसे लुका के 21वें बाब में भी पढ़ सकते हैं.
Verse 29 to verse 33.
29वीं आयत से 33वीं आयत तक.
Let me make you this point from the word of God.
खुदा के पाक कलाम में से ये बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ.
The day of the Lord will come.
खुदावंत का दिन आएगा.
The sun will be turned into darkness.
ये सूरज तारीख हो जाएगा.
And the moon into blood.
और चांद खून सा हो जाएगा.
Terrible judgments will come upon the earth.
और इस जमीन पर आफात आएंगी.
Therefore, we must prepare to leave the earth before the judgments come.
इसलिए सुन ले कि इससे पहले ये आफात आए हमें तैयार होना है ताकि जमीन को छोड़ सके.
According to the word of God,
खुदा के कलाम के मुताबिक,
Jesus Christ will return.
खुदावंद यीशु मसीह फिर आएगा.
As he promised in John chapter 14.
बिल्कुल उसी तरह जैसे उसने यूहन्ना के 14वें बाब में फरमाया.
I go to prepare the place.
मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ.
Then I will return.
लेकिन फिर मैं आऊंगा.
And I will take you to be where I am.
और तुम्हें अपने साथ ले लूंगा ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो.
In 2 Peter chapter 3.
दूसरा पत्रस तीसरा बाब.
From verse 2 we read.
दूसरी आयत से हम पढ़ते हैं.
That the scoffers will ask, where is the promise of his return?
कि हंसी ठठक करने वाले आकर कहेंगे उसके आने का वायदा कहाँ गया?
Because the promise is there.
क्योंकि वायदा तो है.
And we're still waiting for him to come.
लेकिन हम अभी भी इंतजार कर रहे हैं.
But now the time is near.
लेकिन अब वक्त बहुत नजदीक है.
And dear friends, I don't say this because I wish to say it.
मेरे अजीजों, मैं ये बात कहना चाहता हूँ और इसलिए नहीं कहना चाहता कि मैं खुशी से कह रहा हूँ.
I say it because it's based on the word of God.
मैं इसलिए ये बात कहना चाह रहा हूँ क्योंकि इस बात की बुनियाद खुदा के कलाम पर है.
And here is the point.
और ये बड़ी बात है जो बताना
this
चाहता हूँ.
This is the calling out time.
ये वो वक्त है जब हमें बाहर बुलाया जा
this
रहा है.
This is the preparation time.
ये वो वक्त है जिसमें हमें तैयारी की जरूरत
this
है.
This is the time where we have to dedicate our life to the Lord.
ये वो वक्त है जब हमें अपनी जिंदगी को खुदा यीशु के नाम मखसूस करने की
we
जरूरत
must
है.
Have the personal experiences.
हमें शख्सी तौर पर तजर्बा करने की जरूरत है.
First we must believe according to the word of God.
पहले हमें खुदा के कलाम के मुताबिक यकीन करने की जरूरत है.
And we have to obey the word of God.
फिर हमें खुदा के कलाम की फरमाबरदारी करने की जरूरत है.
According to Mark 16:16.
मरकुस 16:16 के मुताबिक.
First the word, the gospel is being preached.
पहले कलाम की मुनादी होती है.
And those who believe are baptized.
और फिर वो जो उस पर ईमान लाते हैं बपतिस्मा लेते हैं.
Please remember forever.
इसलिए इस बात को हमेशा हमेशा के लिए याद रखें.
Disbelief and disobedience go back to the Garden of Eden.
याद रखें बेएतकादी नाफरमानी हमें अदन में ले जाती है.
Jesus Christ was obedient to the cross.
खुदावंद यीशु मसीह सलीब तक फरमाबरदार रहा.
We must come back to obedience.
हमें वापस फरमाबरदारी में आना है.
In Romans chapter 1,
रोमियो का पहला बाब.
And in Romans chapter 16,
और फिर रोमियो का 16वां बाब.
The apostle Paul emphasizes the obedience of the believers.
और वहां पर पालूस रसूल इस बात पर जोर देता है कि ईमानदारों को फरमाबरदार बनना है.
Let me tell you in love.
मुझे आपको मोहब्बत में ये बताना सुन ले.
You cannot go to heaven on your own way.
याद रखिए आप अपने तरीकों से अपने कामों से आसमान पर नहीं जा सकते.
You must come into the narrow gate and go the narrow way.
आपको तंग रास्ते पर आना है और तंग दरवाजे से दाखिल होना.
You must be born again.
आपको नए सिरे से पैदा होना है.
You must know Jesus Christ as your personal savior.
आपको शख्सी तौर पर यीशु को जानना है.
You must have these experiences personally.
आपको शख्सी तौर पर इन सब तजर्बों को हासिल करना है.
And I have got good news for you.
और फिर मैं आपको एक खुशखबरी बताना चाहता हूँ.
Jesus Christ is same yesterday, today and forever.
खुदावंद यीशु मसीह आज और कल बल्कि अब तक यकसा है.
If you look here at the banner,
और अगर आप इस बड़ी तस्वीर की तरफ देखें,
what you read here, I've seen with my own eyes.
जो कुछ आप यहाँ पढ़ते और देखते हैं उसे मैंने खुद देखा है.
I have seen Bible days.
मैंने देखा है बाइबल मुकदस को काम करते.
I have seen people born blind. to receive the sight in one moment.
मैं खुद अपनी आंखों से ऐसे मौजदात देखे हैं जहां जन्म के अंधों ने आंखें हासिल की.
In 1955 when William Branham came to Germany.
1955 में जब खुदावंत का बंदा विलियम ब्रैनम जर्मनी में आया.
He was a man sent from God.
ये वो आदमी था जिसे खुदा ने भेजा था.
With the word of God.
उसे खुदा का कलाम दिया गया.
With the message of God.
खुदा का पैगाम दिया गया.
To the people of God.
खुदा के लोगों के लिए.
And he was preaching the word.
और वो खुदा के कलाम की मुनादी कर रहा था.
And God confirmed the word.
और खुदावंद अपने कलाम को उसके वसीले से साबित भी कर रहा था.
I have seen apostolic time.
मैंने रसूलों के दौर को फिर से नाजिल होते हुए देखा.
I have seen Bible day.
मैंने बाइबल को काम करते हुए देखा.
I have seen people eaten up by cancer.
मैंने देखा है कि कैसे खुदावंद ने कैंसर से लोगों को शिफा.
Healed in one moment.
लोगों को एक लम्हे में शिफा.
Take the bed and walk out.
और एक ही वक्त में उठे और चल कर गए.
I have seen the repeating of what you read in the word of God.
जो कुछ खुदा के कलाम में आप पढ़ते हैं मैंने उसको अपनी आंखों से होते हुए देखा.
So before the return of Christ.
इसलिए यीशु मसीह की आमद से कबल.
The New Testament church must come back where she was at the beginning.
नए अहद नामे की वो कलीसिया जिसका जिक्र बाइबल में पाया जाता है फिर से जमीन पर नजर आनी चाहिए.
A full restoration of all things.
जहां तक सब चीजों की बहाली का ताल्लुक है.
In the prophet Joel God said,
योएल की किताब में खुदा ने
बताया, I will restore unto you all the years.
वहां पर लिखा है कि मैं सब कुछ तुम्हारे लिए फिर से बहाल करूंगा.
In Acts chapter 3,
और अमाल 16वें बाब में,
from verse 19 to 21,
वहां पर 19वीं आयत से 21वीं आयत तक,
the scripture speaks about the times of restoration.
वहां पर फिर से बहाली के वक्त का जिक्र किया गया है.
In fact, in verse 21 we read,
खासतौर पर 21वीं आयत में हम पढ़ते हैं,
that Jesus Christ remains in heaven.
खुदावंद यीशु मसीह जो आसमान पर रहता है,
until the times of restitution of all things.
वो वहां पर हुकूमत करेगा जब तक कि सब चीजों को बहाल न कर ले.
So this is God's time.
इसलिए ये खुदा का वक्त है.
God's time for you.
खुदा का वक्त आपके लिए.
To know the promised word for today.
कि आप आज उसके वादे को जाने.
Malachi chapter 4.
मलाकी का चौथा बाब.
The promise is given.
वहां पर वायदा दिया गया है.
I will send you the prophet Elijah.
कि मैं एलिया को फिर से भेजूंगा.
Before the great and dreadful day of the Lord comes.
खुदावंद के अजीम और होलनाक दिन के आने से कबल.
In Matthew 17.
और मत्ती की इंजील के 17वें बाब में.
Verse 11.
11वीं आयत में.
In Mark chapter 9.
और मरकुस 9 बाब में.
Verse 12.
उसके 12वीं आयत में.
Our Lord confirmed the promise from the Old Testament.
खुदावंद यीशु मसीह ने बार बार पुराने अहदनामे के वायदों को पूरा किया.
And said, Elijah truly shall first come.
और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा हाँ एलिया पहले जरूर आएगा.
And restore all things.
और सब चीजों को बहाल करेगा.
What did Elijah do in the Old Testament?
पुराने अहदनामे में एलिया ने क्या किया?
He brought the people of God together.
वो खुदा के लोगों को उसने जमा किया, इकट्ठा किया.
And took the 12 stones according to the 12 tribes.
और 12 कबीलों के मुताबिक 12 पत्थरों पर एक मज़बा बनाया.
First Kings chapter 18.
और ये सब कुछ पहला सरातीन 18वें बाब में लिखा.
And he rebuilt the altar of the Lord.
और वहां उसने खुदावंत के लिए इस मज़बे को बनाया.
And then he put the sacrifice on the altar.
और फिर उसने उसके ऊपर एक कुर्बानी को रखा.
And then he gave the challenge.
और उसने ये बड़ी ललकार दी.
The God that will answer by fire.
कि वही खुदा जो आग से जवाब दे.
Is a true God.
वही हकीकी खुदा.
How long will you move on both sides?
उसने कहा तुम कब तक डावाडोल रहोगे?
If the Lord is God, serve Him.
अगर खुदावंद ही खुदा है तो उसकी इबादत करो.
And the moment came.
और फिर वो वक्त आ गया.
When God answered.
जब खुदा ने जवाब दिया.
What is the ministry today?
और आज की खिदमत क्या है?
Acts chapter 2, verse 42.
अमाल दूसरा बाब और उसकी 42वीं आयत.
And the remaining in fellowship in breaking of bread and in prayer.
जहां पर लिखा है कि वो दुआ करने में रोटी तोड़ने में इबादत करने में मिलकर रहे.
In the doctrines of the apostles.
और ये रसूलों के अकायद.
In the doctrines of the apostles.
रसूलों की तालीम सुनने में वो करते.
So this is the time.
इसलिए ये वो वक्त है.
For God's people.
जब खुदा के लोग.
To return to God.
कि वो फिर से खुदा के पास वापस आए.
To believe the word of God.
और वो खुदा के कलाम का यकीन करे.
As it was preached in the beginning.
जैसे इसकी मुनादी पहले हुई.
In 1 Corinthians.
पहला करिन्थियों.
chapter 3 verse 10
teesra bab aur uski 10vi ayat
the apostle paul said
paulus rasool ne kaha
I laid the foundation with you
main aapke darmiyan is buniyad ko rakhta
hu no other foundation can be laid
aur koi aur buniyad rakhi nahi ja sakti
which is jesus christ
yesu ke siwa
If you go to Ephesians chapter 2
aur agar aap Ephesians dusre baat ko dekhe
verse 20
aur uski 20vi ayat
the new testament church is built upon the foundation of apostles and prophets
wahan par likha hai ki naye ehname ki kalisiya ki buniyad yesu masih tha
if I say this I say it in love
agar main ye baat aap se keh raha hu to badi mohabbat se keh
raha hu all denominations deviated from the word of god
sab kalisiyaen khuda ke kalam se ek taraf phir gayi
All denominations have their own practices, their own teaching, their own tradition.
Sab tanzeemon mein, firqon mein apni apni tarz ki ibadat hai.
But now the time has come.
Lekin ab wo waqt aa gaya hai.
For all of God's people.
Ki khuda ke sabhi log
in every nation.
Jahan bhi jis qoum mein bhi.
In all denominations.
Sab firqon mein jahan wo hain.
To hear what the Spirit has to say unto the churches.
Wo un baaton ko sune jo baatein ruh kalisiyaon se farmana chahta hai.
The Bible never says.
Bible ye baat kabhi nahi kehti.
Hear what the Pope has to say.
Wo ye nahi कहती कि आप उसको सुने जो पोप कहता है
hear what the cardinals have to say
या जो कार्डिनल कहता है उसकी सुने
or hear what the church has to say
या कलीसिया आपका फिरका जो कहता है उसको सुने
seven times in revelation 2 and 3
मुकाशवा की किताब के दूसरे और तीसरे बाब में सात मरतबा
If you have an ear, hear what the Spirit says unto the church.
लिखा है वो जिसके कान हो वो सुने के रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है?
Let me say this again.
एक बार फिर ये बात कहें.
This is God's time.
ये खुदा का वक्त है.
For God's people.
और खुदा के लोगों का वक्त.
To come back to the Word.
जब उन्हें वापस खुदा के कलाम की तरफ आना है.
To respect the Word of God.
और वो आएं और खुदा के कलाम की तासीम करें.
To line up with the Word of God.
खुदा के कलाम की पैरवी करें सच्चाई से.
Until the scripture is fulfilled
aur jab pura ka kalam pura ho
one faith one lord one baptism
aur ye tab tak aisa karne ki zarurat hai jab tak ek khudaon ek baptisma ek imaan na ho jaye
according to Ephesians chapter 5
it's you ka khat uske 5ve baat ke mutabik
verse 26 and 27
26vi aur 27vi ayat
Our Lord will have a church without spot and wrinkle.
Hamara khudawand ek aisi kalisiya dulhan ki tarah jisme na daag na churi ho rakega.
Washed in the blood of the lamb.
Jo bare ke lahu mein dho ke paak ki jayegi.
And I might repeat.
Aur phir main ye dohrana chahta hoon.
Because the original sin in the garden of Eden happened in the body of flesh and blood.
Kyunki pehla gunah baage adam mein is badan khun gosht mein hua.
The Lord of glory had to come to be like we are
isliye jalal ke khudawand ko hamari tarah gosht ka badan apnana pada
he had to shed his blood for us on earth
use is zameen par aakar hamare liye khoon bahana pada
because the divine life was in the blood of the son of god
isliye ke alahi zindagi khuda ke bete ke lahu mein thi
and all who are purchased by the blood of the lamb
aur wo sab jo bare ke lahu se khareede gaye hain
received the life that was in the blood
वो उस लहू के अंदर जिंदगी को हासिल करते हैं
एंड यू नो वी रेड इट और वी इज सेड हाउ इट इज वर्ड इज
और हमने ये बताया कि ये खुदा का कलाम कैसा है
द लाइफ इज इन द ब्लड
हमने ये जाना कि जिंदगी लहू में
नॉट ए रिलीजन सेव्स यू
आप देखें कोई मजहब आपको नहीं बचा सकता
बट जीसस क्राइस्ट
सिर्फ यीशु बचा सकता
हु शेड हिज ब्लड
जिसने अपना लहू बहाया
फॉर ऑल द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड
उसने बाप के तमाम बेटे और बेटियों के लिए ऐसा किया
सो बिलीव इट विद ऑल योर हार्ट
इसलिए अपने पूरे दिल से इस बात पर यकीन करें
एंड यू शैल बी सेव्ड
तो फिर आप बच जाएंगे
लेट अस समराइज व्हाट वी ट्राइंग टू से हियर टुडे
आज जो कुछ आपको मैंने बताया उसे फिर से दोहरा दूं
एट द फर्स्ट कमिंग ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर
हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहली आमद के वक्त
109 promises and prophecies from the Old Testament were fulfilled.
109 वायदे पूरे हुए जिनका जिक्र पुराने अहदनामे में दिया गया था.
Everything was foretold.
सब कुछ पहले से बयान किया गया था.
His birth, his life, his ministry.
उसका पैदा होना, उसकी खिदमत, उसकी जिंदगी.
His sufferings, his death, his resurrection.
उसके दुखों का, उसके मरने का, उसके जी उठने का.
Everything is recorded in the New Testament.
सब कुछ नए अहदनामे में लिखा है.
All that was predicted in the Old Testament.
वो सब कुछ जिसका वायदा पहले पुराने अहदनामे में दिया गया.
And in Luke chapter 24,
और लूका की इंजील के 24वें बाब.
Our Lord after the resurrection spoke to two disciples.
खुदावंद यीशु मसीह ने जी उठने के बाद शागिर्दों से कलाम किया.
Let me say this again.
एक दफा फिर आपको ये बता दूं.
After the resurrection,
जब यीशु जी उठा,
all religious leaders died with their philosophy.
तमाम मजहबी लोग अपने फलसफे के साथ मर जाते हैं.
There is only one empty grave.
लेकिन सिर्फ एक है जो कब्र में ना रहा.
And every time I go to Jerusalem,
और जब भी मैं यरूशलेम जाता हूँ,
I go to the empty tomb.
मैं इस खाली कब्र को देखता
हूँ. The tomb is empty.
वो कब्र खाली है.
Jesus Christ, the Son of God,
यीशु मसीह खुदा का बेटा,
conquered death and hell.
उसने जहन्नम पर और कब्र पर फतह हासिल.
He rose on the third day.
वो तीसरे रोज जी उठा.
And because he lives,
और चूंकि वो जिंदा है,
we live also.
हम भी जिंदा रहते.
Because we are placed back as sons and daughters of God.
इसलिए कि उसी ने हमें वापस खुदा के बेटे बेटियां बना दिया गया है.
So right now is the calling out time.
इसलिए समझ ले कि आज का वक्त बाहर बुलाया जा रहा है.
The time to put us back as the word of God teaches.
ये वो वक्त है जब हमें खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को संवारने की जरूरत है.
Stop with your own ways.
अपनी राहों को तर्क करें, छोड़ दें.
Program.
अपने मंसूबों को खत्म करें.
Line up with the word of God.
खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी को ढालें.
And here is the point.
और इस बड़े नुक्ते को याद.
At the return of Christ,
जब यीशु मसीह फिर से आएगा,
the bodies will be changed.
ये बदन बदल जाएंगे.
The bodies of those who believe in Jesus Christ.
वो बदन, उन लोगों के बदन जो यीशु पर ईमान रखते हैं.
You can read it in 1 Corinthians chapter 15.
आप इस बात को पहले करंथियों उसके 15वें बाब में पढ़ सकते हैं.
Corruption will take on incorruption.
ये फानी गैर फानी में तब्दील हो जाएगा.
But here is the secret.
लेकिन भेद की बात.
The same power of the Holy Spirit must dwell in us.
वही रूहुल कुदस जो तब काम करेगा, जरूरी है कि अभी हम भी काम करें.
First, the heart must be changed.
पहले दिल का तब्दील होना जरूरी है.
The life must be changed.
जिंदगी को तब्दील होना है.
Because in the Old Testament,
क्योंकि पुराने अहदनामे में,
in Jeremiah chapter 31,
यर्मिया 31वें बाब में,
God made the promise.
खुदा ने ये वायदा दिया.
I will make a new covenant.
मैं एक नया अहद उनके साथ बांधूंगा.
I will give you a new heart.
नया दिल उन्हें बख्शूंगा.
A new life, a new spirit.
एक नई रूह, एक नई जिंदगी दूंगा.
I'm asking you today in love.
इस मोहब्बत, बड़ी मोहब्बत में आपको मैं ये कहना चाहता हूँ.
Have you been born again?
क्या आपने नए जन्म का तजुर्बा हासिल किया है?
Did you experience the salvation of God in Christ?
क्या आपने मसीह में खुदा की नजात का तजुर्बा हासिल कर रखा है?
Are you walking in the ways of God?
क्या आप खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर कर रहे हैं?
Are you waiting for the return of Jesus Christ?
क्या आप यीशु मसीह की आमद के मुंतजिर हैं?
Maybe I should ask you.
शायद मुझे ये भी पूछना चाहिए.
Just forgive me, but I'm going to ask you.
माफ कीजिएगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ.
How many believe that Jesus Christ will soon return?
कितने हैं जिनका ईमान है कि यीशु जल्द आने वाला है?
Let me see your hands.
अपने हाथ दिखा.
Oh, this is glorious.
ये तो बड़ी.
Praise be to Almighty God.
उस अजीम खुदा की तारीफ हो.
So I'm at home.
इसलिए मैं तो समझता हूँ मैं अपने ही लोगों में हूँ.
I'm with a big family.
मैं तो एक बड़े खानदान में हूँ.
You are my brothers.
आप तो मेरे बहनों भाई हैं.
You are my sisters.
आप मेरी बहनें हैं.
We shall spend eternity together.
हम मुझे पूरा यकीन अब मिलकर अब्दियत बसर करें.
Praise be to God.
खुदा की तमजीद हो.
Say hallelujah.
Hallelujah कहें.
Hallelujah.
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 Glory be to God.
खुदावंद को की तारीफ हो.
I don't need to say much more.
इसलिए मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं.
Just for you to know my responsibility.
सिर्फ ये बताना चाहता था कि मेरी जिम्मेदारी क्या है.
I say this almost everywhere wherever I preach.
जहां भी मैं जाता हूँ ये बात जरूर कहता हूँ.
That the Lord called me directly to the ministry.
के खुदा ने मुझे बराह रास्त खिदमत में बुलाया.
You might say, is this true?
आप हो सकता है कहें कि क्या ये सच है?
I was there when it happened.
मैं वहीं था जब ये हुआ.
I can take you to the city, to the street, to the place.
मैं आपको शहर में, उस गली में, उस घर में ले जा सकता हूँ.
To make it very short.
लेकिन मुख्तसर करते हुए.
It was on April 2nd, 1962.
ये 1962 में अप्रैल की दूसरी तारीख के दिन हुआ।
जस्ट एट द टाइम व्हेन द न्यू डे वाज डॉनिंग,
और ये वो वक्त था जब सुबह का भी आगाज ही हुआ था।
आई वेंट टू द विंडो,
मैं खिड़की के पास गया।
लुक्ड आउट द विंडो,
बाहर देखा।
It was a day, a beautiful day breaking.
और एक बड़ा अच्छा खूबसूरत दिन जिसका आगाज हो रहा।
And then I came back into the room.
और फिर मैं वो मंजर देखकर वापस अपने घर की तरफ, कमरे की तरफ आया।
Prayer as we pray in the morning.
और सुबह के वक्त जैसे सब लोग दुआ करते, मैंने मुख्तसर सी दुआ।
Committing the day to the Lord.
और मैंने वो दिन खुदावंत को सौंपा।
And after the prayer.
और दुआ के बाद,
I stood in my room.
मैं अपने कमरे में खड़ा हुआ।
And I looked straight to the window.
और मैंने खिड़की की तरफ दोबारा देखा।
And then it happened.
और फिर उसी वक्त ये हुआ।
The voice of the Almighty came from up, but from the right like this.
और फिर मुझे ऊपर से अजीम खुदा की आवाज आती हुई सुनाई दी।
In the German language.
और ये जर्मनी में थी।
And every word was spoken precisely.
और हर एक लफ्ज बिल्कुल साफ।
And the Lord said these words.
ये अल्फाज खुदावंद ने मुझसे फरमाए।
My servant, your time for this city will soon be over.
उसने कहा है, मेरे खादम, इस शहर के लिए तेरा वक्त जल्द खत्म होने वाला है।
I will send you to other cities to preach my word.
अपने कलाम की बिशारत के लिए मैं तुझे दूसरे शहरों में भेजूंगा।
The next moment I was on the carpet.
और अगले ही लम्हे मैं नीचे गिरा हुआ था।
I just fell to my left, right there.
और मैं वहां अपने दाहिने बाएं संभाल ना सका, गिर गया।
I tell you the truth.
मैं आपको सच बता रहा हूँ।
From that day my life is no more my life.
उस दिन से मेरी जिंदगी मेरी नहीं रही।
And my time is no more my time.
और मेरा वक्त मेरा नहीं रहा।
I have to go from city to city.
मुझे एक शहर से दूसरे शहर जाना होता है।
And from country to country.
और इसी तरह एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाता
हूँ। To share the precious word of God with as many as possible.
ताकि जितने ज्यादा लोगों के साथ खुदा के बेशकीमत कलाम को बांट सकूं, मैं बांटू।
So we're still in Bible days.
इसलिए हम बाइबल के जमाने में।
The Lord is still calling.
आज खुदावंद लोगों को बुला रहा है।
He is still sending.
वो फिर भी भेज रहा है लोगों को।
His message is still going forth.
उसके पैगामात अभी भी भेजे जा रहे हैं।
He is the Savior. He is the Healer.
वो ही शाफी है और वही निजात दहिंदा है।
He confirms His word.
वो अपने कलाम को साबित करता
है। And if we believe tonight.
और अगर आज शाम हम इस बात पर ये
Glory of God.
हम खुदा के जलाल को जरूर देखेंगे।
We shall see God confirming His word.
हम देखेंगे कि खुदा अपने कलाम को पूरा करेगा।
But tonight it will be your experience.
लेकिन आज शाम इसे आपका तजुर्बा बनना चाहिए।
Just expect something from the Lord tonight.
खुदावंद से अच्छी बातों की तुक को रखें।
And He will give it to you.
और वो आपको बख्शेगा।
And only one more scripture.
और सिर्फ एक और हवाला बयान करना चाहता हूँ।
Coming back to Luke chapter 24.
लुका की इंजील के 24वें बाब।
Our Lord began with Moses and the Psalms and the prophets.
वहाँ पर लिखा है कि खुदावंद ने फिर मूसा से और फिर तोरेत और ज़बूर से।
And showed that all things had to be fulfilled.
सब हवालों में से जाहिर किया, उन्हें बताया कि कैसे सब कुछ पूरा होना।
He is the same today.
वही खुदावंद यीशु मसीह आज वही
है। He just shows us from His own word.
और आज भी वो इसी तरह कलाम को इस्तेमाल करता है और
how things are taking place right now.
वो दिखाता है कि आज जो बातें हो रही हैं वो किस तरह से बयान पहले से
I believe according to the scripture.
मैं खुदा के कलाम के मुताबिक इस बात पर यकीन रखता हूँ।
That the second coming of Christ is near.
कि खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद नजदीक है।
This is preparation time.
और ये वक्त तैयारी का वक्त है।
This is calling out time.
ये वो वक्त है जब हमें बाहर बुलाया जा रहा है।
According to Matthew 25,
मत्ती की झील के 25वें बाब के मुताबिक,
at midnight there will be a cry.
आधी रात को धूम मची।
Behold, the bridegroom comes.
कि देखो दुल्हा आ गया।
Go ye out to meet him.
जाओ उससे मिलो।
In verse 10 we read.
10वीं आयत में हम पढ़ते हैं।
They that were ready went into the marriage and the door was closed.
वो जो तैयार थे उसके साथ ज़ियाफ़त के घर में दाखिल हुए और दरवाजा बंद हो गया।
Brothers and sisters,
मेरे अजीज बहनों भाइयों,
dear friends,
दोस्तों अजीजों,
Don't miss your opportunity.
अपने वक्त को जाया मत कर.
In Luke chapter 19,
लुका की इंजील के 19वें बाब,
from verse 41,
41वीं आयत से,
our Lord wept over those who missed the day of their visitation.
अपने जमाने में खुदावंद यीशु मसीह ने उन पर आंसू बहाए जिनसे वो मिलने के लिए आया.
It was too late.
इसलिए कि उनके लिए बहुत देर हो चुकी थी.
That's a term I don't like.
ये बात मैं कहना नहीं चाहता, मुझे पसंद नहीं.
The term too late. I don't
like. बहुत देर हो गई, मुझे ये अच्छा नहीं लगता.
If you're too late, you're too late.
अगर आपको बहुत देर हो जाए तो फिर वाकई बहुत देर हो जाए.
Then you will knock at the door.
फिर दरवाजे पर दस्तक भी दी जाए.
But you will be outside.
लेकिन आप सच ये होगा कि बाहर.
Because it's too late.
क्योंकि बहुत देर हो चुकी हो.
But tonight it's not too late.
लेकिन शुक्र हो कि आज शाम अभी बहुत देर नहीं हुई.
We're still in the time of grace.
हम फजल के वक्त में रह रहे हैं.
In the day of salvation.
निजात के दिन.
And before the sun darkens and the moon is going to be changed into blood.
और इससे पहले कि सूरज तारीख हो जाए और खून की माने चांद बन जाए.
God has sent a message.
खुदा अपने पैगाम को भेजता है.
And maybe I finish in saying.
और मैं ये बात कहकर बात को खत्म करना चाहता हूँ.
God always uses human lips.
खुदा हमेशा इंसानों को इस्तेमाल करता
है. He had his prophets, his apostles.
उसने अपने रसूलों को, नबियों को इस्तेमाल किया.
And since the days of Reformation.
और इसी तरह से इस्लाही दौर से ऐसे लोग रहे हैं.
God had a Martin Luther.
खुदा ने मार्टिन लूथर को उठा कर रखा.
John Zwingli.
और जॉन ज्विंगली.
And all these men in church history.
और फिर मसीही तारीख में और बहुत सारे ऐसे लोग.
In our time, God used Brother William Branham in a very special way.
और आज हमारे दौर में, हमारे जमाने में खुदावन ने अपने बंदा विलियम ब्रैनम को इस्तेमाल किया.
I knew him for 10 years.
मैंने उसे शख्सी तौर पर जाना और 10 साल से जानता.
I drove with him in the same car.
एक ही कार में हम बैठकर एक जगह से दूसरी जगह गए.
Ate with him at the same table.
एक ही मेज पर बैठकर हमने खाना भी खाया.
Was in his meetings in Germany and in the USA.
और USA में और जर्मनी में जहाँ भी इबादत हुई मैं उसके साथ था.
He was a true man of God.
वो खुदा का हकीकी खादम था.
Sent with a message of God.
जिसे खुदावन ने पैगाम देकर भेजा.
With a message of restoration.
और ये बहाली का पैगाम था.
With a message of preparation.
तैयारी का पैगाम.
Restoring the teachings of the apostles.
रसूलों की तालीम को फिर से बहाल करने का पैगाम.
Bringing us back to the original foundation.
हमें फिर से वापस सही बुनियाद पर लाने का पैगाम.
Beloved brothers and sisters.
मेरे अजीज बहनों भाइयों.
I repeat.
मैं इस बात को दोहराता.
He that has an ear, let him hear what the Spirit says.
जिसके कान है वो सुन ले के रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता.
I repeat.
और मैं फिर कहता.
God's way to us is our way to God.
खुदा का रास्ता हमारी तरफ वैसा ही है जैसा हमारा रास्ता उसकी तरफ.
Everything else will be a disappointment.
और उसके अलावा कुछ भी और मायूसी लेकर आएगा.
Jesus Christ was a personal manifestation of God on earth.
खुदावंद यीशु मसीह जब इस जमीन पर आया तो वो खुदा का मजहर था.
He was the only one who could say, "You have seen me, you have seen the Father."
सिर्फ वही ये कह सकता था जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा.
So God was in Christ.
इसलिए खुदा मसीह में था.
He reconciled the world to himself.
जो उसके वसीले से दुनिया के साथ मेल मिलाप कर रहा था.
But you must receive everything God prepared for you.
वो सब कुछ जो खुदा ने आपके लिए तैयार कर रखा है आपको हासिल करना है.
And I wish to pray with you.
और मैं आपके साथ ये दुआ करना चाहता हूँ.
And I wish that you believe.
और मैं ये ख्वाहिश रखता हूँ कि आप यकीन करें.
And expect the God of heaven to confirm his word.
और आप इस बात की तवक्को रखें कि खुदा अपने कलाम को आपके लिए पूरा करेगा.
In the name of Jesus Christ our Lord.
खुदावंद यीशु मसीह के नाम में.
Could I ask you to stand?
क्या मैं आपसे दरखास्त करूं कि आप खड़े हो
जाएं? Let us all stand.
आइए हम सब खड़े हो जाएं.
How many have a need?
कितने हैं जिन्हें इस बात की जरूरत है?
Whether it's salvation or healing or deliverance.
कितने हैं जो यहाँ कुछ कमी जरूरत रखते हैं, चाहे वो नजात की हो, मुखलिस की हो, शिफा की हो.
Or if you wish to dedicate your life to the Lord.
या शायद ऐसे लोग हों यहाँ पर जो अपनी जिंदगी खुदा यीशु के नाम मखसूस करना चाहते.
If this is the day the Lord has made for you.
अगर आप आज के दिन اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ خدا نے آپ کو بخشا ہے.
Don't miss your opportunity.
اس دن کو فضل کے دن کو ضائع مت کریں.
Ask the dear Lord to come into your life.
خدا مند یسوع مسیح سے کہیں کہ وہ آپ کی زندگی میں آ جائے.
And then this will be the day.
تو پھر یہ دن بن جائے گا.
The Lord has made for you.
ایک ایسا دن جو خدا نے آپ کے لیے مقرر کر.
Then I will have the guarantee to see you again in glory.
اور اگر آپ ایسا کریں تو مجھے اس بات کا یقین ہوگا کہ میں آپ سے جلال میں ملوں گا.
How many wish to be remembered in prayer?
کتنے ہیں جو چاہتے ہیں انہیں دعا میں یاد رکھا.
Just raise your hands, of course.
اپنے ہاتھوں کو ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں. شاید سبھی لوگ چاہتے ہیں. خداوند کی تعریف.
Just believe now.
صرف یقین کریں.
And according to Mark chapter 11.
اور پھر مرقس 11ویں باب کے مطابق.
First we hear the word of God.
پہلے ہم خدا کے کلام کو سنیں.
Then we believe.
پھر ہم اس کا یقین کریں.
And then we pray.
پھر ہم دعا کریں.
But then we speak the things which we believe God will do.
اور پھر خداوند نے جو باتیں ہمارے لیے کی ہیں ہم ان کا ذکر کریں.
That's why the Lord said when you speak to this mountain, to this mountain be moved into the sea.
اسی لیے جب خدا یسوع مسیح نے یہ بات کہی کہ تم اس پہاڑ سے کہنا کہ سمندر میں جا گر تو ایسا ہی ہوگا.
You just have to speak it with your lips.
آپ کو اپنی زبان سے اپنے ہونٹوں سے یہ بات کہنی ہے.
Because in your heart you believe.
کیونکہ دل سے ایمان لایا جاتا ہے.
But with your lips you confess.
لیکن اپنے منہ سے اقرار کیا جاتا ہے.
Romans chapter 10.
اور یہ بات رومیو 10ویں باب میں.
So if you pray for salvation,
اس لیے اگر آپ نجات کے لیے دعا کریں.
The moment must come when you say, Lord, I believe you saved me.
دیکھیں پھر آپ کو ایک وقت میں ایسا کہنا پڑے گا, خداوند میں یقین کرتی ہوں کہ تو نے مجھے بچا لیا.
If you pray for healing,
اگر آپ شفا کے لیے دعا کریں.
The moment must come,
تو پھر وہ وقت بھی آنا چاہیے.
When you say, I'm healed,
جب آپ کہیں میں نے شفا پایا.
According to your word,
تیرے کلام کے مطابق.
You just confess with your lips.
صرف اپنی زبان سے اقرار کریں.
What you believe in your heart.
کہ آپ جس چیز کا یقین کریں.
And tonight we shall pray together.
اور آج شام ہم مل کر دعا کریں.
We can all raise our voices.
ہم سب مل کر دعا کر سکتے ہیں. زبان بلند کر سکتے ہیں.
All pray.
ہم سب دعا کر سکتے ہیں.
All believe.
سب یقین رکھ سکتے ہیں.
And all receive.
اور سب حاصل کر سکتے.
Let us do it now.
آئے ہم دعا کریں.
Dear God in heaven,
آسمانی باپ,
we pray in the name of Jesus Christ our Lord.
ہم اپنے خدا یسوع مسیح کے نام میں دعا کرتے ہیں.
Confirm your word.
اپنے کلام کو پورا کر.
Where signs following.
جہاں پر خدا تیرے نشانات آتے ہیں.
Save the lost.
اے خدا مند کوئی وہ بچا لے.
Deliver those who are bound.
وہ جو قیدی ہیں آزاد کر.
Confirm your word.
اپنے کلام کو پورا کر.
Give divine revelation.
اے خدا مند الہی مکاشفہ عطا کر.
Give restoration.
بحالی عطا کر.
Restore all things.
سب چیزوں کو بحال کر دے.
Into your own church.
اپنی کلیسیا میں بحال کر.
And may we be prepared, dear Lord.
اور اے خدا مند کاش ہم تیرے لیے تیار ہوں.
For the day of your return.
تیری آمد کے لیے.
Lord bless each and every one.
اے خدا مند ہر ایک کو بڑی برکت دے.
In a very special way.
بڑے خاص طریقے سے چھو لے.
This is a day,
کیونکہ یہ وہ دن ہے جس نے تو نے بنایا.
ایوری ون
ہر ایک کے لیے جو یہاں پر موجود ہے.
We pray for the city Lahore.
آئے خدا ہم اس لاہور کے شہر کے لیے دعا مانگتے.
We pray for all people.
سب لوگوں کے لیے دعا مانگتے.
For the whole country.
سارے ملک کے لیے دعا مانگتے.
In all religion.
آئے خدا ہم تمام مذاہب کے لیے.
Just for everybody.
ہر ایک کے لیے.
May there be a visitation of God.
آئے خدا ہم کاش تیری ان کے ساتھ ملاقات ہو جائے.
In this country.
اس ملک میں.
And may this be the beginning.
اور اے خداوند اس سے ان کا آغاز ہو جائے.
Mighty move of God.
جہاں پر خداوند تیری جنبش ہو.
I ask again, confirm your word.
اے خداوند منت کرتا ہوں اپنے کلام کو پورا کر.
Bless all the ministers.
ہر ایک خادم کو برکت دے.
Bless your people.
اپنے لوگوں کو برکت دے.
And be with us all.
اور ہم سب کے ساتھ.
In the precious name.
اے خداوند اس عظیم نام میں.
Of Jesus Christ.
یسوع کے نام میں سب کچھ.
Bless the government.
اے خداوند اس قوم کو برکت دے.
Bless everyone.
ہر حکومت کو سب لوگوں کو برکت.
In the name of Jesus Christ our Lord.
یسوع مسیح کے نام میں.
آمین.
آمین.
Have you believed?
کیا آپ نے یقین رکھا؟
Did you receive?
کیا آپ نے حاصل کیا؟
God bless you.
خدا آپ کو برکت.
You may be seated.
آپ بیٹھ سکتے.
Thank you for your patience.
آپ کے صبر کا یہاں آنے کا
شکریہ. Thank you for the translation. Thank you. Perfect. God bless you. Amen.
Sure.